ज्योति निकलती
कुछ दे सकती है
निकली ना
रोमा
वो कौन है
सदाशिव तो स्वयं कृष्ण तत्व ही है
उन्हीं का
रुद्र जो है उनके जो अंश जो है रुद्र तत्व है और उनके जो गर्भ के
यहाँ से निकल किंतु ये रुद्र तामसिक है तामसिक नहीं कभी वो निर्गुणता जो है वो तामसिक दिख पर जैसा प्रकृति है चेतन किंतु जड़ का काम करती है जड़ चीज को उत्पन्न करती है इसलिए जड़ प्रकृति कही गई प्रकृति सब समय समझना जो भगवान के स्वभाव को कहते हैं ऐसे जैसे पानी है पानी को विल के द्वारा खूब जोर से उसको मथन तत्व से बिजली निकलेगी कि नहीं ये शुद्ध जैसे जल शुद्ध होकर के बिजली से उत्पन्न होती है किंतु है जड़ ऐसे ही जड़ा प्रकृति के द्वारा भगवान का इच्छन जो चेतन है उसको क्षुब्ध करके और ये जगत की सृष्टि है ठीक
और इसकी में थोड़ा और एक आदेश दिया
जितने यहाँ के हमारे कारीगर हैं कुदाल फावड़ा टोकरी सब लेकर के एकदम प्रस्तुत हो जाए सब लोगों ने भाई क्या बात है अभी हिमालय पर्वत चलना है और खोदना है वहां पर सब लोगों को हजारों हजारों कारीगर लग गए हजारों हजार मजदूर और झूड़ी टोकरी कुदाल सब लेकर के वहां पर पहुंच गए अजय खोदना आरम्भ कर दो उन लोगों ने सोचा भाई पीछे निकलेगा वो खोदा खोदते खोदते हिमालय का इस पार से उस पार कर दिया एक छोटी सी नैंगटी इंदुरी चूही चूहिया छोटी सी उसमें से फूल निकल करके और उधर चली गौ प्रमाण बहुत सुंदर आप लोगों ने अद्वैताचार्य जी के संबंध में बहुत सुंदर सुंदर बातें बतलाई नई नई बतलाएं विशेष करके आज मंगल महाराज जी ने भी बहुत सुंदर नया है तो उसी में वर्णन और भी बातें हैं हम लोग कल देखेंगे तो उनके संबंध में बोलेंगे और फिर प्रेम भक्ति चंद्रिका हम लोग फिर से आरम्भ
करेंगे
आज हमारे
नमो महामदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवृषे हे कृष्ण स्वनाशिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अंगश्यामिषटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दे वरम् जर्जं जागुदरोचि सांविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि सद्गामाभिरामोदरं राधास्कन्दलेशितोज्जलप्रियं ज्ञायेन कामो भक्त्याभिन्नापराधलक्ष्ये चित्त्वाश्रुकामाभितरङ्गमस्तु कृपामयी वृंदे नमस्ते चरणाचंद्रायराधिकाये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय प्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रे तन्मे तया सर्वोभिने सर्वभूतमुनिमा। यस्या कदा रश्मिधे विश्वान् जाया प्रकृति प्रेम भक्ति से कहते हैं कि प्रेम भक्ति यदि किसी के हृदय में उदित हो जाए तो अविद्या का भी नाश हो जाता है। और हम लोगों ने सुना है कि नमाभाषिनी अविद्या दूर हो जाती है और उसके सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। तो यहाँ का प्रेमा भक्ति जो लिखा है, प्रेमा भक्ति का जो साधन है कृति सत्भाव ससात्मविधा इंद्रियों से की वृत्ति से जो सब जब साधन भक्ति किया जाता है यह लक्ष्य करते कि भाव भक्ति उत्पन्न है। भाव भक्ति को उत्पन्न करने के लिए जब स्वरूप सिद्धा भक्ति का आचरण किया जाता है इन इन इंद्रियों से तब उसको साधन भक्ति करते हैं। तो प्रेमा भक्ति का ये साधन में उसी से प्रारंभ में ही अविद्या का विनाश होता है। तो अविद्या विनाश के लिए ही बतलाया राग अभिनिवेश द्वेष अविद्या अस्मिता राग
द्वेष
अभिनिवेश ये सब बतलाया। इसके बाद में ये भी बतलाया सुकृति उत्थ दुष्कृति उत्थ अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ ये सब अनर्थ ही अविद्या के ही प्रकार है। मैं या स्थूल शरीर मैं हूं और इसी में कर्ता का अभिमान करना ही अस्मिता है। अविद्या माने कृष्ण को भूल जाना, जीव के स्वरूप को भूल जाना, कृष्ण की सेवा को भूल जाना, अपराध को न समझना। तो ये सब जो चीजें हैं ये अविद्या अस्मिता राग माने विषयों में अनुराग विषयों में आसक्ति और दुराभिनिवेश ये सब दुराभिनिवेश माने उसमें अत्यंत आसक्त हो जाना ये सब इसके द्वारा क्लेश होते हैं। ये सब दुष्कृति उत्थ अनर्थ है। ये सब दुष्कृति माने पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का फल ये दुष्कृति उत्थ है और भोगों का पाना ही सुकृति उत्थ अनर्थ है। नाम अपराध और उससे उसके जो फल है नामापराध के ये फल है। कोई नामापराध के संबंध में यहाँ पर हम लोग बतला रहे थे वैष्णव निंदा हमति निंदति वैवेष्टि न अभिनंदति जातिनो हर्षम
दर्शने
पदतानिषट वैष्णव को देख करके अभ्युत्थान नहीं करना उठ करके उनका आदर करना चाहिए। यदि नहीं किया वैष्णव जब जा रहे हैं तो उनको थोड़ी देर तक जा करके पहुंचा करके तब फिर प्रणाम करके लौटो
यदि वैष्णवों की निंदा करते थे, हंती माने मारना, हंती निंदति वही द्वेष्टि, उसे द्वेष करना इत्यादि, ये सब वैष्णवों के प्रति ये निंदा है। वैष्णवों की भूल करके भी निंदा मत करो। यदि कोई वैष्णव में दुराचार देखो तो ये समझो कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी से ही हो जाएगा अनन्य भजन के कारण। तो भी उसका संग मत करना, उनको प्रणाम कर लेना, प्रणाम कर सकता है, उनका आदर कर लेना ऊपर से, किंतु भीतर से उनका संग करके उनके बातों को अनुगमन नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी वैष्णव की निंदा हो गई तो तुरंत संभलो, उनसे प्रार्थना करो और उनसे क्षमा मांगो। और शुद्ध वैष्णव की निंदा में तो भाई मरण है, उनकी तो कभी भूल करके निंदा मत करो, कभी निंदा मत करो, नहीं तो चुपचाप रहो। यदि कुछ हो रहा है तो चुपचाप रह जाओ, क्योंकि ये चुपचाप रहना भी बड़ा भारी मुश्किल है, नहीं होता। कभी कभी हम कुछ भावावेश में बहक जाते हैं, क्या एक किसी वैष्णव को, कौन वैष्णव, अभी उपाधि युक्त वैष्णव जो है उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनके प्रतिद्वंदी की हम कुछ निंदा कर देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाए, इस मतलब से कर देते हैं। कभी खबरदार ऐसा नहीं करना, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। मान लिया कि किसी कारण से दो वैष्णव में अनबन हो गई, किसी कारण तो एक से भेंट हुई तो उनकी निंदा कुछ करके और इनको प्रसन्न कर लेंगे, फिर उनसे जब भेंट हुई तो इनके संबंध में कहने लगे, यही होता है साधारण। ये खबरदार न हो, नहीं तो ये अवश्यंभावी पतन का कारण है। गुरु जी से के चरणों में अपराध जरा कम होता है, क्योंकि शास्त्रों ने मना किया है, सब जगह हम जानते हैं, इसलिए न, किंतु वैष्णव के प्रति होने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए खूब सावधान रहना चाहिए, इसलिए सबसे ऊपर रहता है। शिव को विष्णु से, कृष्ण से स्वतंत्र ईश्वर मानना यह अपराध है। शंकर जी को वैष्णव ठाकुर समझो, वैष्णव में सर्वोत्तम वैष्णव, कृष्ण तत्व को जानने वाले, किंतु उनको कोई कोई स्वतंत्र ईश्वर मान करके उनकी पूजा करते हैं, यह दोष है। हम लोग के वैष्णव में गुरु जी की पूजा होती है, वैष्णव की भी पूजा होती है, तो शंकर जी वैष्णव है, इनकी पूजा करना दोष नहीं है, बल्कि ये अच्छा है। वैष्णव शिव ठाकुर की पूजा होनी चाहिए, किंतु इनको स्वतंत्र ईश्वर मान लिया, जो कृष्ण भी स्वतंत्र है, विष्णु भी है और ये भी, तब गड़बड़ हो जाए। भगवान का प्रिय सेवक मान करके उनकी सेवा करो। यदि कौजे शिव जी की पूजा करने के लिए तो उड़हुल के फूल और बेल के पत्ते इत्यादि की आवश्यकता होगी तो उसको हम देंगे कि नहीं, भावना का प्रसंग दो, भावना का फूल उनको दो, परिक्रमा करो, स्तव स्तुति करो, वंदना करो, नहीं? वो बेल के पत्ते इत्यादि स्वतंत्र ईश्वर की बुद्धि से दी जाती है, और शंकर की आधी परिक्रमा होती है ईश्वर बुद्धि से, तो वो सब हम लोगों को नहीं करना है। क्या परिक्रमा देंगे? वैष्णव ठाकुर उनको मानेंगे, गुरु मानेंगे, शिक्षा गुरु मानेंगे उनको हम, इस रूप में हम उनकी पूजा कर सकते हैं। अभी शिव चतुर्दशी भी आने वाली ही है, बहुत शीघ्र आ रही है, बहुत से वैष्णव लोग करते हैं, बहुत से वैष्णव नहीं करते हैं, उनकी निष्ठा के ऊपर है। किंतु जो लोग ये समझते हैं सदाशिव के रूप में हम उनके ऋणी हैं, तो वो करेंगे, करने में कोई भी बात नहीं है। अर्थात शिव का स्वरूप और नाम इत्यादि विष्णु से पृथक है स्वतंत्र रूप में, ऐसा मत समझो। जैसे गुरु जी की पूजा करते हैं हम लोग पूर्णिमा देवी की पूजा करते हैं, यमुना जी की प्रदीप से पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, तो शंकर जी भी की कोई आरती उतार दे तो क्या हर्ज है। किंतु स्मारकों की पद्धति से बेल पुष्प और इत्यादि के द्वारा वो पूजा में हम लोग नहीं जाएंगे, स्मारक भाव नहीं तो अपराध हो जाता है। और शंकर की निंदा करना महा अपराध, कभी भी भूल करके भी शंकर जी की, पार्वती जी की, देवताओं की कभी भी निंदा न करो। गुरुजी की सेवा कर रहे हैं यह तो ठीक है, किंतु गुरुजी की सेवा करो उसमें मनुष्य बुद्धि का आरोप करोगे तो वो अपराध हो जाएगा। हम लोगों का प्राय यही हो जाता है। मनुष्य बुद्धि कैसे होती है? मनुष्य बुद्धि और एक देव सब कुछ जानते हैं, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है हमारे किसी भी सेवा की। भाव वो चाहते हैं और हमारी भक्ति वृद्धि ये चाहते हैं। यदि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और ये समझें कि गुरु जी से यह छिप करके यह काम कर लें और गुरु जी को पता न चले तो ये क्या हुआ? क्यों? यही मनुष्य बुद्धि। एक आदमी अपने गुरुजी के अप्रकट लीला में प्रकाश होने पर अप्रकट लीला में चले गए, परलोक गए, कल है हमारे गुरुजी को बड़ा कष्ट हुआ, उनके दुख को देख करके बड़ा हुआ और रोने लग गए, तो ये क्या हुआ? बस मनुष्य बुद्धि। तो ऐसी क्या हुआ? ठीक कर ऐसे गुरु जी में कभी भी मनुष्य की बुद्धि मत करो जो मनुष्य हैं। गुरु जी में सब समय भगवत बुद्धि रखो, कभी उनमें क्रोध न देखो, कभी उन पर क्रोध मत प्रकाश करो। गुरु जी अब आपकी सेवा हमसे नहीं होती, बहुत सेवा कर दिया, बहुत आपको देख लिया, कुट बुद्धि के आप हैं। ऊपर से एक, भीतर से एक, ये सब गुरु जी के प्रति हरिनाम के प्रभाव से पाप है होगा। हरिनाम में पाप बुद्धि, नाम बोले पाप बुद्धि, हरिनाम भी करेंगे और पाप भी करेंगे। हरिनाम के करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर पाप करेंगे फिर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी चिंता की बात नहीं। पाप भी करते रहेंगे और भी होता जाएगा, ऐसा बुद्धि कभी मत रखो। किसी भी शुभ कर्म को भक्ति के बराबर मत समझो, कोई भी शुभ कर्म भक्ति के बराबर नहीं है। शुभ कर्म मैंने क्या है? शुभ कर्म जैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, यह एक शुभ कर्म, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, पति की सेवा, स्त्री के साथ में व्यवहार, पुत्र के प्रति भावना, समाज के प्रति, देश के प्रति उपकार, लोकोपकार, किसी के शरीर से उपकार करना इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, ये सब सदाचार ने सब कर्म है। वेदों का अध्ययन, हवन इत्यादि, योग तपस्या इत्यादि सब शुभ कर्म। भक्ति के पाषण में भी ये नहीं है। यदि कोई यह कहता है कि पहले ये सब कर लो, समय जो बच जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे, तब तो शुभ कर्म से भी ये छोटा होगा। अथवा इन शुभ कर्मों के करने से तब भक्ति होती है, ऐसा भी मत समझो। भक्ति स्वतंत्र है, कब किसको हो जाएगी कोई ठीक नहीं, बस साधु संतों की कृपा या भगवान की कृपा हो जाएगी, बस भक्ति हो गई, शुभ कर्मों के द्वारा नहीं होगा। अजामिल ने कौन सा शुभ कर्म किया जो उसको भक्ति हो गई? क्यों हो गई बतला सकते हो? बतलाओ तो, क्या हुआ अजामिल को भक्ति कैसे हुई बतलाइए आप? नारायण के बोलने से ही नहीं हुआ, किंतु यथार्थ में उनको ये सब चीजों का ज्ञान हुआ विष्णु के पार्षदों के दर्शन से, ये साधु संग की कृपा से उनको भक्ति हुई।
दर्शन और विजंग दर्शन कथोपकथन
वो पार्षद सुना और सुन करके तब उसको निष्ठा उत्पन्न हुई, तब वो चला गया हरिद्वार में भजन किया, तब फिर हुआ जो पहले नाम किया था उससे ही एकदम मुक्ति हो गई, ऐसी बात नहीं है।
साधन का आरंभ ही नहीं है,
इसलिए कोई भी शुभ कर्म भक्ति के बराबर नहीं है। संसारी लोग और स्मार्ट लोगों का यही भाव होता है, शुभ कर्म भक्ति से बड़ी है, मुख से नहीं कहते हैं किंतु कार्य रूप में वही है, पहले घर का काम कर लो तो जो सामान बचे तो कमा कर लो। जब जीवन किसी काम का न रहे, जब अथर्व हो जाए, बैल जैसे एकदम गिर पड़ता है अब उठता नहीं, अब वैसे हम हो जाए, फिर कोई काम के नहीं रहे तब फिर भजन करना चाहिए या गलत है? ऐसा करने से अपराध, श्रद्धाहीन विमुख और जो श्रवण करने के लिए अनिच्छुक हैं, ऐसे लोगों को भगवान का नाम नहीं देना चाहिए। हरे कृष्ण बोलो 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 सबको कह दो, मांस मछली अंडे खा रहे हैं सुनना नहीं चाहते, क्या महाराज आप क्या ये धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं? बस में बैठ रहे हैं, ट्रेन में बैठ रहे हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे उपकार करने लगे जगत का, सबका उपकार हो सब सुने, और उस समय वो बाधा दें महाराज जी आप चुपचाप, आपके भगवान बह रहे हैं आप धीरे से नहीं बोल सकते, पटुक्ति करते हैं सब कुछ कर, तभी हरे कृष्ण करने लग गए। ऐसा वितरण नहीं करना चाहिए, जब श्रद्धालु नहीं है, उन्मुख नहीं है, अनिच्छुक है और काजे लो ये माला ले लो, ये तिलक लगा देते हैं अभी पूछ देना, और अभी अभी लगा लेते हैं इसके बाद में घर जाकर के पूछ देना, और गले की माला की इच्छा हो तो पहनना नहीं तो खोल लेना, और ये माला दे देते हैं जब इच्छा हो तो इसको कर लेना, जबरदस्ती कहीं ना मैं लूंगा, अरे ले तो लो, जबरदस्ती जोर करके ये सब अपराध है ना। इसलिए ऐसे लोगों को पहले नाम में श्रद्धा उत्पन्न करके तत्व देना चाहिए। नाम का महात्म सुन करके भी ये सब, और नाम में प्रीति का नहीं होना यह भी अपराध है, प्रीति पूर्वक नहीं करते, चलते फिरते नाम करते रहते हैं, दो बाल इधर बजा लिया उधर बजा लिया, ये सब शुद्ध चित्त से भगवान नाम करने की चेष्टा करनी चाहिए। नाम के विषय में अहम मम इसमें डूबे हुए हैं, मैं इस शरीर में भाव लेकर के देहात्म बुद्धि करते हैं और हरि नाम भी करते हैं तो भी ये अपराध, नहीं जान सुन करके वो कर रहा है एक दूसरी बात, किंतु अहम मम बुद्धि भी करते हैं और नाम भी करते हैं, जानते हैं ये खराब है तो भी करते हैं, अधिकांश रूप में यही सब अपराध होता है। वैष्णव की निंदा नहीं होने पर भी और सब नहीं होने पर भी ये सब जो अहम ममो का दूर करना और हरिनाम करना नहीं करता। क्या अहम ममो माने क्या? मैं बहुत हरिनाम करने वाला हूं, मैंने सब जगह हरिनाम का मैं प्रचार कर रहा हूं, और हमारे जैसा कोई कौन कीर्तनिया है, कौन कीर्तन कर सकता है। मैं बहुत अच्छा गले से सुंदर सुस्वर से हरि नाम करता हूं इत्यादि, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब 10 अपराध है। अब ये जब हरिनाम करने लगता है व्यक्ति, सबसे पहले गुरु पदाश्रय, गुरु की विषम रूप में सेवा और हरि कथा स्वरूप सिद्धा भक्ति का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि नौदा भक्ति करते 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 अनर्थ एक देश वर्तनी, एक देश में एक अंश में वो हट जाती है भजन में करते करते। इसके बाद में
बहुदेश बोलते हैं,
जब आसक्ति होगी या रुचि होने लग जाएगी तो बहुदेश वर्तिनी और सब जो स्थूल जो चीजें हैं अपराध, ये सब अनर्थ दूर होने लग जाएंगे। भाव जब होगा तो प्राय की मैंने अब थोड़ी सी रह जाएगी, गंध रह जाएगा, और प्रेम होने पर परिपूर्ण हो जाएगा, पूर्णा पूर्ण रूप में अनर्थ दूर हो जाएंगे। तो अभी गंध रह सकता है, भगवत दर्शन से अत्यंत की हो जाएगा, फिर कभी अनर्थ नहीं होगा। बिना भगवत दर्शन किए हुए फिर होने की संभावना हो सकती है, होता तो नहीं है किंतु हो ही सकता है।
प्रेम ही तो धर्म दर्शन हो जाए, चाहे वह अत्यंत की ओर बोलते हैं।
प्रेम जब दर्शन होगा, प्रेम होने के बाद में दर्शन होता है, प्रेम का तारतम्य है। पहले थोड़े से होगा तो फिर और होगा और होगा और होकर के पूर्ण तब होगा।
स्वरूप सिद्ध है पूर्ण और वस्तु सिद्धि अत्यंत की ना की
भाव अवस्था पे ही
प्राय की।
इसके बाद देखिए प्रेम होते होते आरंभ होते होते वो सब अब होगा नहीं, तो अभी गंध रह सकता है। वो गंध भी आतंक के रूप में प्रेम होने पर होगा। मनुष्य जीवन में साधक शरीर में भाव अवस्था तक ही स्थिति है, उसमें प्रेम का कुछ उदय होने लगता है, कुछ कुछ प्रेम सुरजान सुसाम्य भाव, यह है भाव। ममता अतिशयांकित यह प्रेम में है। तो जब इस मनुष्य शरीर में प्रेम नहीं होता, यदि हो जाए, यदि हो भी गया तो पागल होगा, पागल हो जाएगा प्रेम,
साधारण जीव समझेंगे,
अन्यथा शरीर को त्याग कर देगा। विशेष करके स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव इत्यादि जो है, ये इस शरीर में तो कभी हो ही नहीं सकता, साधक शरीर में कभी नहीं होगा, क्योंकि भगवान से मिलने के बाद में, उनकी लीला में प्रवेश करने के बाद में तब मान हो सकता है। प्रेम की प्रगाढ़ता साधक शरीर में ये सब नहीं होगा, प्रेम का आभास हो सकता है। प्रेम स्नेह मान प्रणय ये कोई भी चीज इस साधक शरीर में नहीं होगा, कभी कभी उसका आभास दिखाई पड़ सकता है, जैसे आंखों से नेत्रों से जल बरसना, आंसू आना, ये सब हो गया। कुछ कुछ लक्षण वो जैसे बतलाया ना, सुप्त घुमाई की स्थिति में हो सकता है, किंतु ज्वलित जहां हुआ तहां और समझो कि प्रेम आने लग गया। ये पूरा तो मनुष्य शरीर में, साधक शरीर में स्नेहमान प्रणय राग अनुराग ये सब कभी भी संभव नहीं। रति के अभिभाव में अर्थात भाव की जब होने लगता है, वो हृदय में प्रकाशित होने लगता है, उसी का नाम प्रायिकी है। प्रेम अभिभाव में पूर्ण है और भगवत भगवान के साक्षात्कार में ही आतंत की। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्तिराज स्वामी सिंधु के टीका के ऊपर में ये सब चीजें इन लोगों ने प्रकाश की है। एक जगह और लिखा है ना, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे नामी भैरवी सिंधु। उस समय में भी शुद्ध भी वृंदावन नहीं दिखेगा, साधक शरीर में नहीं दिखेगा, कभी झलक दर्शन मिल सकती है। उसी झलक दर्शन के लिए यहाँ जैसे नारद जी को भगवत स्वरूप का एक दर्शन शांति दर्शन हुआ, उसी तरह से किस क्यों उसकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ना, और उत्कंठा नहीं होगी तो ये बढ़ेगा ही नहीं। उत्कंठा बढ़ाने के लिए कभी झलक वृंदावन का किसी को दर्शन मिल जाता है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था, नाम करने लगा प्रेम से, करते करते देखा क्या सुन्न भरा पुल देखा, है कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ है। थोड़ी देर के बाद में देखा कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर के मंद मुस्कान के सहित अधरों पर मुरली रख करके बजा। मैं एकदम पागल हो गया और एकदम छूटा उनको पकड़ने के लिए। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। थोड़ी देर के बाद में जब और निकट पहुंचा तो झट अंतर ध्यान मैं पकड़ नहीं सका और एकदम गिर गया, मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद में जब मूर्छा छूटी तो फिर रोने लग गया, हाँ इनको हाथ में आए हुए कृष्ण को मैं पकड़ नहीं सका। ये सब ऐसे झलक दर्शन कभी कभी हो जाते हैं, जैसे बिल्लू मंगल ठाकुर जी को हुआ था, जैसे माधवेंद्र पुरीपाद के लिए हुआ था, ऐसे ऐसे भक्तों का होता है। फिर कहते हैं श्रीगुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन हा प्रभु कर दया देह मोरे पदे छाया एवे जस भूषुक त्रिभुवन। अब गुरु जी की महिमा बतला रहे हैं, गुरु जी कैसे हैं करुणा सिंधु। गुरुवस्तक के प्रथम श्लोक में संसार दावा नल नीह लोक धनाय कारुण्य धना, भगवान की करुणा जब घनीभूत मूर्ति के रूप में होती है तो उसी का नाम गुरुदेव है। इसलिए संसार दावा नल नीह लोक, संसार रूपी ये जो दावा नल है वो जल रहा है, भीषण आग की लपटें उठ रही हैं। ऐसा हो गया कि उसमें जल करके अब उठने की भी शक्ति नहीं रह गई, हम लोग की ये दशा है। अब सेंस भी नहीं है उठ सके, बस जल रही है। एक सूकर को ये ज्ञान नहीं होता मैं दुर्गंधमय स्थान में दुर्गंध चीजों के बीच में घृणित रूप में रह रही हूं। टट्टी के कीड़े को भी ऐसा ज्ञान नहीं होता, दूसरों को ऐसा होता। इस तरह से हम लोगों को इसी में ही ऐसे एकस्टम्ड हो गए हैं, इस प्रकार से अभ्यस्त हो गए हैं जो ये सब चीजें अब बड़ा आनंददायक मालूम होती हैं। तो गुरु जी करुणा के घन समुद्र हैं। इसलिए समुद्र कहा करुणा के, हम लोगों से कोई यदि थोड़ी सी बात छेड़छाड़ करे तो हम उसको छोड़ देते हैं, मन से भी छोड़ देते हैं, पहले शरीर से छोड़ देंगे और फिर मन से छोड़ देते हैं। गुरु जी सहज नहीं थे, एक बार यदि श्रद्धा पूर्वक उनको उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया सचमुच में, अब जितना भी हो और गुरु को जान लिया कि गुरु ही हमारे हैं, मैं उनका हूं, ऐसा करते आत्मसमर्पण कर दिया। गुरु किसी भी स्थिति में हजार यदि वो भटक भी जाए तो उसे वो साजी नहीं थे, उनका अपराध भी नहीं लेते। तब विशेष सब समय जब भी अपराध करेगा तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे जैसे एक तो देखो तुलसी की रामायण में वो कोई शूद्र जो काकभूषण का पूर्व जीव शंकर जी की उपासना करते थे, इनके गुरु थे वैष्णव, काज भाई राम राम भी किया करो, राम का भी भजन, किंतु वो राम का भजन करता रहा किंतु शंकर जी की उपासना ही उसका प्रधान था। एक दिन उन्होंने कहा अरे शंकर जी के भी उपास्य तो राम है, तो तुम राम का भजन क्यों नहीं करता है? तो उसने कहा जी ओ तुम शंकर जी के द्रोही हो, ऐसे सब लोग कहते हैं वैष्णव को। कोई कहे यदि शंकर जी का भजन के बदले राम की श्रेष्ठता कर दी शंकर जी से तो वो द्रोह मानते हैं, किंतु बात यह ठीक नहीं। तो उसने कहा गुरु जी को राम की प्रतिष्ठा करते हैं शंकर जी की आप निंदा करते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं शंकर जी के भी उपास्य राम, बस ऊपर एकदम बिगड़ गया और उनका अपमान करने लगा। उस वहीं पर शंकर जी की मूर्ति फिर दुखंडित हो गई, फट गई और कहा जी जाओ तुम कोटि कोटि जन्मों तक कल्प तक नरक वास करो। अब ये गुरु जी ने सुना तो उन्होंने कहा जी शंकर जी की आराधना कीजिए, प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, जैसा है आपका ही है, आप इसको कृपा। बहुत स्तुति पर शंकर जी ने कहा जी क्या चाहते हो? तो प्रभु इसको क्षमा कर दो। कहा जी हमने कह तो दिया है जैसे भाई इसको कोटि कोटि नरकों में जाना पड़ेगा, तो इसको जाएगा लाखों कोटि जन्म होंगे, किंतु क्षण क्षण में इसका ये भाव दूर होता चला जाएगा, एक जन्म लिया साथ ही साथ मरेगा, सब झट समाप्त हो जाएगा, कुछ देर में ही हो जाएगा। बस ऐसा ही हुआ, शंकर जी ने उनकी प्रार्थना से कर दिया। इसके बाद में मनुष्य जन्म हुआ, इसके बाद में काकभूषण भी बने, काकभूषण जी से इसके बाद में फिर भगवत भक्त बन गए। ये है उनकी कृपा। किंतु एक व्यक्ति पान खाते थे, गुरु जी ने कहा पान मत खाना एकादशी के दिन, तो प्रभु ठाकुर जी को जो पान की तो बात किया, जो प्रसाद होता है वो भी हम तो ले लेते हैं, तो वो क्या प्रसाद दूर कर दिया जाए? गुरु जी ने कहा जी हाँ दूर करना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं कर सकता, अपोज किया इन्होंने। उन्होंने कहा जाओ मैं तुमको आश्रित क्या करता हूँ, जब गुरु की बातें ही नहीं मानता तो गुरु से और शिष्य का संबंध क्या? शिष्य तो वह है जो गुरु की बात मान करके चले साधन में, तो अभी तू साधन में ही ऐसा कर रहा है तो सिद्ध में नहीं जाने तू क्या करेगा, जब उसको बात कर दी। उन्होंने प्राण प्रत्याग कर दिए, प्राण प्रत्याग कर दिया। यदि उनमें यदि उसके लिए अफसोस जो गुरु जी ने त्याग कर दिया इसलिए प्राण प्रत्याग किया, तो फिर प्राण प्रत्याग करने के बाद में फिर जन्म होगा तो फिर उस गुरु अपना ले सकते हैं, अनुताप यदि करे तो, और नहीं यदि वो ढीठ बन करके द्वेष करते हुए ऐसा किया द्वेष बुद्धि से तब तक उसका नरक अवश्य है। तो गुरु जी अपार करुणा, एक जन्म में नहीं लाखों जन्मों में गुरु उस भूले भटके को ले आकर के फिर रास्ते में लगा करके उसे ले जाए। जैसे गोप कुमार कितनी बार भटक गया, कभी राजा बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी इंद्र बन गया, कभी ब्रह्मा जी बन गए, गुरु जी ने प्रेरणा देकर के दर्शन देकर के उसको अंत तक ब्रज तक पहुंचा करके तब छोड़ा। ये गुरु जी की कृपा। यदि अपराध हमने नहीं किया और अपने आप कुछ भूल चूक हो गई तब तो भाई ठीक, और जानबूझ करके गुरु से द्वेष किया तो भगवान की चरण धूनी तुमको क्षमा, गुरु जी तो क्षमा कर देंगे किंतु उनकी चरण धूनी क्षमा नहीं करेगी, इसलिए कभी भी गुरु अपराध न होना चाहिए। ये जो 10 प्रकार के बतलाए नवा अपराध नहीं करना चाहिए। लोकनाथ लोकर जीवन लोकनाथ, यहां पर दो लोकनाथ, कृष्ण स्वयं लोकेर जीवन, ये कृष्ण के बड़े प्रिय हैं ये अर्थ। और नहीं तो लोकनाथ दो स्वामी के गुरु हैं, ये लोकनाथ गोस्वामी के लिए कहे। लोकनाथ जो है कैसे हैं, लोगों के जीवन है। क्यों जीवन है, कृष्ण के प्रेम देने वाले हैं। जीवों का जीवन ही भक्ति है, यदि भक्ति नहीं तो उनका जीवन जीवन नहीं है। विश्व में सबसे अधिक सब अपेक्षा ये कृष्ण के प्रिय भक्त और बड़े दयालु हैं। अपराध शाली ने, हम लोग कितने अपराध करते हैं, जैसे मां